मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 18 मार्च 2020 है और आज के इस AFEIS के लाइफ मैनेजमेंट में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। दोस्तों मुझे नहीं मालूम कि पिछले दो दिनों से मैं हनुमान चालीसा को केंद्र में रखकर जो बातें आप सबसे कर रहा हूं वो से आप कितना सहमत हैं कितना असहमत हैं। खैर सहमति असहमति तो एक अलग बात है, वो तो होनी भी चाहिए, लेकिन वो पता नहीं आपको कितना रोचक लग रहा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे इतना विश्वास तो है कि आप कुछ समय तक तो मेरा साथ निभाएंगे क्योंकि आगे अभी बहुत सी बातें होनी हैं। तो जहां मैंने अपनी कल बात खत्म की थी वहां से अब हम आगे शुरू करते हैं। तो यह हनुमान चालीसा है क्या? आपने तीनों स्थितियों को देख लिया। मुझे ऐसा लगता है, मैं अपने लिए बात कर रहा हूं, अगर आपको भी ठीक लगे तो आप भी इसे स्वीकार कर सकते हैं, नहीं तो आप अपने लिए अपने ढंग से अपना रास्ता चुन सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि बेसिकली ये जो हनुमान चालीसा है एक प्रकार से साइकोथेरेपी है। साइकोथेरेपी यानी कि आप यूं कह लीजिए मानसिक इलाज। तो ये जो मानसिक इलाज है ये मानसिक इलाज किसी दवाई के माध्यम से नहीं है बल्कि अपने आत्म प्रेरणा के माध्यम से है, आत्म कथन के माध्यम से। मैं खुद अपने से बात कर रहा हूं, अपने से ही मैं बात कर रहा हूं और अपने से बात कर करके मैं अपनी साइकोथेरेपी कर रहा हूं। देखिए साइकोथेरेपी के दो तरीके हो सकते हैं, एक तो यह कि कोई व्यक्ति मुझे समझाए तो मैं समझूं, है ना, और दूसरा यह है कि बिना किसी व्यक्ति के समझाए मैं खुद ही अपने आप को समझाने की कोशिश करूं। अब वो समझाने की कोशिश कुछ भी हो सकती है। तो मैंने यही काम किया कि मैंने किसी से समझने के बजाय हनुमान चालीसा के माध्यम से खुद को ही समझाने की कोशिश शुरू कर दी कि इससे मुझे ताकत मिलेगी, भूत के प्रति मेरे अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता पैदा होगी, या यूं कह लीजिए कि उसका मुकाबला करने की एक ताकत आएगी। पहली बात तो यह कि वो आएगा ही नहीं, और अगर आप ही गया मान लीजिए तो कहीं ना कहीं हनुमान चालीसा मुझे यह विश्वास दिलाएगा कि यार कोई बात नहीं, वो आ गया है ना, तुम तो इसका मुकाबला नहीं कर सकते क्योंकि ये तो बहुत शक्तिशाली है, लेकिन अभी हनुमान जी आने वाले हैं, चिंता मत करो। क्योंकि आप देखिए कि पूरे के पूरे हनुमान चालीसा में क्या है आपको ध्यान से समझना चाहिए, उनके अर्थों को जानने की कोशिश कीजिए। पूरे के पूरे हनुमान चालीसा को आप पढ़ जाइए। पूरे के पूरे हनुमान चालीसा का केंद्र में केवल एक ही बात है और वह है हनुमान जी के शौर्य का वर्णन, हनुमान जी के उन कार्यों का वर्णन जिसमें शौर्य की जरूरत होती है, जिसमें वीरता की जरूरत होती है, जिसमें साहस की जरूरत होती है, जिसमें समर्पण की जरूरत होती है, और उसमें कोई छोटी मोटी चीजों को नहीं लिया गया है जो व्यक्ति को सामान्य सी बात लगे, बड़ी बड़ी चीजों को लिया गया है। लाए सजीवन लखन जियाए, सोच करके देखिए आप, संजीवन ला करके और लक्ष्मण को जिला रहे हैं। जिलाए इसका मतलब है कि लक्ष्मण मृतक की स्थिति में थे और तुमने उनको जिला दिया, तो हनुमान जी मैं तो केवल डरा हुआ हूं, मैं जिंदा हूं, मैं मरा नहीं हूं। हां डर डर करके मरने के करीब हो गया हूं, तो जब आप लक्ष्मण को, मरे हुए लक्ष्मण को, मृतक लक्ष्मण को जीवित कर सकते हैं, मृत्यु समान लक्ष्मण को जीवित कर सकते हैं, तो मैं तो जिंदा हूं, आप मुझे तो बचा ही सकते हैं, मुझे भय से मुक्त कर सकते हैं। आप पढ़िए प्लीज, आप एक काम कीजिए, छोटी सी आती है, एक एक दो दो रुपए में आजकल हनुमान चालीसा मिल जाते हैं, आप अब उसको साहित्य की तरह पढ़िए, लिटरेचर की तरह पढ़िए, धर्म ग्रंथ की तरह मत पढ़िए, धर्म स्रोत की तरह मत पढ़िए। जैसे कि आप कोई लिटरेचर पढ़ रहे हैं, जैसे होता है ना कि जब हम लोग मिडिल स्कूल वगैरह में पढ़ते थे तो कविता पढ़ाई जाती थी और कहा जाता था कि सप्रसंग व्याख्या कीजिए, तो उसको सप्रसंग व्याख्या करने के लिहाज से पढ़िए, उनके अर्थों को समझने की कोशिश कीजिए, तो आपको ये बड़ी अद्भुत चीज मिलेगी, बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिलेगी कि यार इसमें तो जितनी भी बातें कही गई हैं वो सब के सब बातें हनुमान जी के गुणगान में है, और जो गुणगान के केंद्र में है वह केवल उनके शौर्य का वर्णन है। अगर वो ये कह रहे हैं कि अंजनी पुत्र, तो अंजनी पुत्र के माध्यम से वो क्या कह रहे हैं, उन्हें माता की याद दिला रहे हैं कि तुम सोचो कि किसका, किसके तुम पुत्र हो, और पवन सुत नामा, और जो पुत्र, जो तुम पुत्र हो पवन के पुत्र हो, तुम्हारी माता अंजनी है, और अंजनी और पवन का नाम यहां याद दिलाने का मकसद क्या है कि तुम जानो कि तुम कौन हो, तुम छोटी मोटी हस्ती नहीं हो। जितने भी आप स्ट्रेंजा पढ़ते चले जाएंगे उसमें केवल केवल और केवल आपको हनुमान के शौर्य का बखान मिलेगा। हम लोग अक्सर कहते हैं कि यार पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव जो वातावरण है वहां रहो, क्योंकि जहां पॉजिटिव वातावरण रहेगा या जहां पॉजिटिव बातें होंगी वहां अच्छी किरणें निकलेंगी, वहां आपका मन अच्छा होगा, आपका मन उत्साह से भर जाएगा, आपके मन में जोश होगा। और जहां मरियल टाइप की बातें होंगी, अरे यार कुछ नहीं होना है, अरे यार ये तो जिंदगी बस ऐसे ही है, झंडू लाल हो गई है जिंदगी में, तो क्या रखा है, फालतू का है, दो को। जब आप ऐसी ऐसी बातें सुनेंगे तो आपको अपनी अच्छी खासी जिंदगी भी, बिल्कुल सच बात यह है, उसी तरह से होती हुई दिखाई देगी कि फालतू फंड की हमारी जिंदगी हो गई है यार, इससे अच्छा तो नहीं ही जीते तो ज्यादा बेहतर है। तो जिस तरह की बातें होंगी उस तरह का वातावरण बन जाएगा, अंदर भी और बाहर भी। अब आप इस पर हनुमान चालीसा को फिट कीजिए। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं, चाहे मन ही मन कर रहे हो या फिर चाहे बोल करके कर रहे हो, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप पाठ कर रहे हैं। और पाठ करते करते या पाठ करने के दौरान आप लगातार हनुमान के शौर्य को याद कर रहे हैं, उनके पराक्रम को याद कर रहे हैं कि इन्होंने क्या 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 किया है। तो आपको क्या लगता है कि आपके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है? अगर आप उनके अर्थ को जानते हैं और सजग होकर के पाठ कर रहे हैं, याद रखें, तभी आपके अंदर कुछ होगा, अदरवाइज सच में कुछ नहीं होगा। वो तो वैसे ही है कि जैसे आपने बिल्कुल गीली लकड़ी में आग लगा दी है, अगर कुछ हो भी रहा है तो कैसा लगा, धुआं निकल रहा है, लपटें नहीं निकल रही हैं, उससे तो ज्यादा अच्छा है कि यार इस आग, इस लकड़ी को जलाते ही नहीं, क्योंकि आपको लपटों की तलाश है। तो जब हम अर्थों को जानते हैं तभी उस अर्थ के अनुकूल हमारे मस्तिष्क में क्रियाएं होती हैं, जिसे आप कह सकते हैं कि प्रतिक्रियाएं होती हैं, रिएक्शन तभी होगा। आप जब अर्थ ही नहीं समझ रहे हैं तो ठीक है, चाहे कोई भी भाषा हो, कोई भी शब्द हो, कुछ भी कहा जाए, उसे क्या फर्क पड़ता है, वो तो एक ध्वनि मात्र है, हमारे दिमाग में मैकेनिकल तरीके से डाल दिया गया है और हम मैकेनिकल तरीके से उसको बोल रहे हैं, न जान रहे हैं, न समझ रहे हैं, न सीख रहे हैं, कुछ भी नहीं है, बस करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं, करते चले जा रहे हैं। इसे ही कहते हैं अंधानुकरण। तो अंदर तो कुछ भी नहीं हो रहा है, न दिमाग में हो रहा है, न दिल में हो रहा है। तो दोस्तों, अब शायद थोड़ी सी मेरी इस बात पर विचार करने की स्थिति आ गई है कि हनुमान चालीसा और कुछ भी नहीं है, हमारी अपनी साइकोथेरेपी है। और फिर देखिए इसी में क्या कहा गया है, जो सत बार पाठ कर सोई, सत बार पाठ करें, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो हनुमान चालीसा को पढ़ रहा है, जो इसका सौ सौ बार पाठ कर रहा है। तो लोग क्या सोचते हैं मालूम है यार, कि सौ बार पाठ कर लो हनुमान चालीसा का तो ये बीमारी दूर हो जाएगी, घर में सुख संपत्ति आ जाएगा, ये फलाना हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, सौ बार पाठ कर लो तो होते हैं खूब, 108 पाठ हो रहे हैं हनुमान चालीसा के, हनुमान चालीसा की संध्याएं हो रही हैं, पूरा देश हनुमान चालीसा का पाठ एक पर्टिकुलर टाइम पर कर रहा है, और खासकर जब हनुमान जयंती आती है तब तो ऐसा होता ही है। देखिए मैं उन सबकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, है ना, मैं तो केवल सच्चाई बता रहा हूं। आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, पूरे देश में वातावरण बन सकता है, बशर्ते कि आप सजगता के साथ करें, उसके अर्थ को समझें, उन चीजों को आत्मसात करें, तो ये काम करेगा। क्योंकि साइकोथेरेपी तो तभी काम करेगी ना जब आपके समझ में आए, तो इसके समझ में आना निहायत ही जरूरी है। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आज की बात को मुझे यहीं इसी बिंदु पर समाप्त करना चाहिए, और अपनी बात अब मैं यहीं समाप्त करना चाहूंगा। कल फिर आप लोगों से बात होगी, आप लोग भी इस पर खूब सोचें, और अब आप सब मुझे इजाजत दें। नमस्कार।